ओम शांति। वैसे ये हमारा भट्टी का लास्ट सेशन है ना? और लेकिन बाबा ने आप कमाल कर दिया, प्रकृति भी आपकी दासी बनी, इसलिए आपको जानकी पार्क का प्रोग्राम भी मिलने वाला है आज। तो उसमें खास करके हम लोग विशेष जिसके अनुभव है वो थोड़ा सा रखते, थोड़ा डांस गाना वो भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने जब से आए कुछ ना कुछ सीखा, सीखा सभी ने। अभी इसको क्या करना है? अभी हमारी भट्टी शुरू हो जाएगी। ये तो आपको जस्ट दिखाया कि हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरा साल तो यहां नहीं रह सकते ना। तो जैसे ट्रेलर होता है थोड़ा सा दिखाया जाता है, वो आपको दिखाया गया। अब ये प्रैक्टिकल आप अपने जीवन में वहां जाके करना है। सब करेंगे? सभी को अच्छा लगा या अच्छे अनुभव हो रहे? हाँ, तो जब अच्छे अनुभव हो रहे तो इसको लिखो और वो चीजें याद रखो। जब भी हम वहां जाएंगे तो ये चीजें रोज कम से कम एक बार दो बार रिपीट करो, तो धीरे धीरे वो पक्की हो जाएगी। न तो यहां तो हम बहुत अच्छा अनुभव किया, लेकिन अगर हम साथ में नहीं लेके जाएंगे और घर परिवार में भी जाके हम वही ना वही व्यवहार करेंगे तो बोलेंगे अरे इतना दिन माउंट आबू गए कुछ तो फर्क पड़ा नहीं है, होते ना इसे। तो कुछ चीजें हमें सीखना है। योग, योग माना क्या होता है? योग माना परमात्मा से कनेक्शन। और जब कनेक्शन होता है तो हमारे अंदर क्या होता है? योग्यता आती है। अब योग्यता है कैसी? छोटी छोटी बातें, देखो जीवन में छोटी छोटी बातें आती है। परिस्थितियां तो बहुत आती है लेकिन बातें छोटी छोटी आती है, अब उसको मैनेज करना है। एक बार मैं औरंगाबाद से आ रहा था, पुणे आ रहा था, तो साथ में एक भाई बैठे थे, तो कुछ पानी भी नहीं मैंने लिया, तो मैं अपना पैसा ढूंढ रहा था, पॉकेट होता है, पर्स होता है ना उसमें, तो मुझे वो बहुत गौर से देख रहा था, ध्यान से देख रहा था। तो उसके बाद उसने ज्ञान की बात शुरू कर दिया। उसने बहुत अच्छी बात बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी वो, फिर मैंने अपने जीवन में उसको धारण भी किया। क्योंकि नॉर्मली हम पैसे कैसे रखते हैं पर्स में, पॉकेट में, कैसे भी इधर एक नोट उधर एक नोट उधर एक। आज जब अपने को 10 रुपए ही चाहिए तो आपको पूरा पॉकेट छानना पड़ता है ना। पर्स में भी ऐसा होता है, कोई खुले पैसे तो पूरा ये जेब वो जेब से ढूंढना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे सिखाया, देखो आपके पास जो भी पैसा है, आप 500 की नोट, फिर 200 की, 100 की, फिर 50 की, फिर 10 की, 5 की, ऐसा सीरियल वाइज रख दो, है ना। देखो आप अगर पैसे को वैल्यू देंगे तो पैसा भी आपको वैल्यू देगा। हम ऐसे कचड़े जैसा उसको पैसे को रख देते ना, तो वो भी एक ज्यादा समय अपने पास नहीं रहेगा, ये बोले हमको कुछ वैल्यू नहीं। अगर हम किसी के घर में मेहमान जाते हैं, आपका देखभाल ढंग से नहीं करते तो क्या बोलते हैं? अरे चलो दो दिन के लिए आए लेकिन एक दिन से निकल चलते हैं, है ना। जैसे आप यहां रुके हैं तो आपको मन करता है कि जल्दी जाए या रुकने का कर रहा है? रुकने का करता है ना। क्यों? क्योंकि बाबा आपका इतना प्यार करता है, इतना सम्मान करता है, खिलाता पिलाता हर चीज है ना। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बार हमारे हिस्ट्री हॉल में क्लास चल रहा था, तो प्रकाशमणि दादी हमें बता रही थी कि कोई लोग आते हैं और कहते हैं हमारा बैच टूट गया। तो दादी ने बोला कि आपको मेडल मिला है और मेडल कैसे आपका टूटता है, मतलब आप ध्यान नहीं देते। क्योंकि हम लोग को तो फटाफट कपड़े निकाल दे, इधर डाल दिया उधर डाल दिया, तो ये जो है ना पैच जल्दी टूट जाता है उसका ऊपर का। तो दादी जी ने हमें सिखाया कि बैच कैसे पहनना चाहिए। तो तो दादी जी ने कहा एक तो आप अपने खटिया पे बैठो या कुर्सी पे बैठो और आराम से यहां बैच पहनो, अगर गिरेगा तो कहां गिरेगा, आपके गोद में गिरेगा तो टूटेगा नहीं। तो बोले मेरा इतने सालों एक भी बैच टूटा नहीं, कभी नहीं टूटा। तो ये देखो सीखने की, अपने आप को कैसे मैनेज करने। हम योग तो बहुत करते हैं, 4 घंटा 5 घंटा, लेकिन ये योग्यता ही हमारे जीवन में आनी चाहिए। हमारी जो जानकी दादी है, किसी भी सेंटर पे जाती थी ना, तो किचन में जाएगी, फिर वहां बहनों के रूम में जाएगी, बोलो खोलो अलमारी, अलमारी देखेगी, फिर देखेगी कैसे कपड़े रखे हैं। तो मतलब दादी का पूरा ध्यान, और दादी फिर सिखाती थी नहीं ऐसे एकदम, जैसे कि कैसे देखने में भी अच्छा लगना चाहिए और सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। तो ये हमें योग्यता या अपने जीवन में लाना चाहिए, तभी हम योग्य, तभी हम योगी है ना। ऐसे थोड़ी कि कई बार हम देखते हमारा कोई जैसे आधार कार्ड है या कुछ पैन कार्ड है या कुछ ढूंढना होता है, किसी का एड्रेस ढूंढना होता है, तो हमारा टेबल होता है तो टेबल में इतना कचरा होता है, इसकी पावती उसकी पावती ये न वो, और जो चीज हम चाहिए वो हमको मिलती नहीं। इसका मतलब हम उसको ढंग से नहीं रखते, उसको यथार्थ जगह पे नहीं रखते। तो इसके कारण क्या होता है, बिखर जाता है, फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है, कई बार हमारा बस छूट जाता है, कभी हमारा ट्रेन छूट जाता है ना। तो जब भी हम कहीं निकलते तो पहले से हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हमें माउंट आबू जाना है तो हमें कितने ड्रेस चाहिए, हमें क्या चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, ये चाहिए, वो सारी चीजें एक लिस्ट बना दो और उस हिसाब से आपका बैग भरो, है ना। बैग में हम जब भरते हैं तो क्या होता है, कोई चीज ढूंढते तो पूरा बैग उधार देते, फिर वो चीज मिलती फिर नहीं मिलती, फिर ये है ना। कई बार हम देखते क्लास में भी जो कभी बहने होते माता है, उनका पर्स होता है बड़ा, उसमें मोबाइल बच जाता है। अब मोबाइल स्विच ऑफ करना या मोबाइल का आवाज बंद करने के लिए वो 3-4 कप्पे में ढूंढने लगते हैं कि कहाँ मिल, कहाँ, इधर रखा, उधर रखा, उधर रखा। तो उसमें तब तक सब हॉल में सबके संकल्प चलते, अरे इतना भी उसको ये नहीं, सबका मतलब मोबाइल स्विच ऑफ करना भी नहीं आ रहा है, सब रिंग बज रहा है। तो हमारा एक भाई था हमारे पास, उसने बहुत अच्छी बात बताई कि उसका जगह फिक्स करो, जो हमारे पर्स है जैसे भाई लोग के जेब होते, तो एक जेब में मोबाइल की जगह फिक्स करो, वो दूसरी चीज नहीं रखो। क्योंकि पहले हमारे क्या होता था कि उसी मोबाइल में हम चाबी भी रखते थे, पैसा भी रखते थे, वो सारा एक ही चीज, फिर क्या होता था उसके ऊपर क्रैचेस आदि पड़ते थे। तो हमने देखा तब से हमारा जो मोबाइल कभी क्रैच नहीं, कभी कुछ नहीं, एकदम सेफ रहता है। तो ये बातें जो है, योगी माना क्या है, योगी माना हमारे जीवन में इस प्रकार से योग्यता आनी चाहिए। जैसे हमारे जगदीश भाई जी बहुत अच्छी बात बताते कि हमें अगर खुद की वैल्यू हम नहीं देंगे तो दूसरे कैसे देंगे। तो एक बार हमारे शक्तिनगर की बात है, उन्होंने फोन किया किचन में, तो एक बहन ने उठाया, तो उसने बोला कौन बोल रहे, तो उन्होंने बोला कि मैं लता बोल रही हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो पहले तो आप खुद को वैल्यू देखना देना सीखो। बोले आप लता बहन भी कर सकते हैं, लता दीदी बोल सकते हैं, है ना। अगर हम ही अपने को वैल्यू, मैं सुभाष भाई बोल रहा हूँ, सुभाष बोल रहा हूँ या सुभाष भाई बोल रहा हूँ, तो कितना फर्क पड़ता है। जब आप बाहर कहीं फोन करते तो आप हेलो करते तो मैं ब्रह्मा कुमार फलाना बोल रहा हूँ, तो उसका कितना वजन होता है, कितना उसके अंदर रॉयल्टी होती है। तो हमें ये चीजें हमें सीखना है, छोटी छोटी चीजें होती है, देखो इस कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ही आराम से हम सीख सकते। हमारी जो मम्मा है, तो मम्मा ऐसी चीजें को बहुत एक्सपर्ट थी कि एक बार ऐसे ही मम्मा को बाबा ने बोला कि बच्चों को ठंडी के दिन है, बच्चों को देसी घी का हलवा खिलाओ। तो मम्मा तो हाँ करने में माहिर थी, हाँ बाबा। मम्मा को पता है कि ये किसने कहा है, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के तन से बोला है, और ये भी मामा को पता है कि घर में कुछ भी नहीं है, घर में ना आटा है ना घी है कुछ नहीं, तो भी मामा हाँ बाबा जी बाबा बच्चों को तो मिलना ही चाहिए। अब वो मम्मा ने अपनी तैयारी कर दिया, चूल्हा तैयार करके बर्तन बर्तन धुलाई करके, तो बराबर 10-11 बजे पोस्ट आती थी, पोस्ट आई एक भाई को भेजा मार्केट साइकिल पे, वो आटा लेके आया आए, फिर घी लेके आए, और बस बाबा के बच्चों को देसी घी का हलवा मिल गया। तो ये मम्मा की विशेषता थी कि कैसे। और दूसरी चीज हमारे एक भाई ने बताया कि मम्मा मतलब त्यागी भावना, त्याग भावना बहुत, जैसे बाबा ने कहा चलो बच्चे आज पिकनिक चलते हैं, ठीक है, तो सब लोग फटाफट तैयार हो गए पिकनिक, बाबा के साथ घूमने जाना है। जब वो पिकनिक की जगह गए तो देखा यहां तो मम्मा है ही नहीं, मम्मा कहाँ गई, मम्मा तो आई नहीं। तो फिर जब वापिस आए तो मम्मा को पूछा मम्मा आप क्यों ना आई, क्यों नहीं आई, तो मम्मा ने कहा नहीं घर भी कोई संभालने वाला चाहिए ना, सब खेलने कूदने जाएंगे तो घर में कौन रहेगा। तो घर में जो जो बच्चे थे फटाफट जो कुछ काम इधर उधर आधा पाधा छोड़ के चले गए। तो मम्मा ने आराम से पूरा किचन की सफाई ये सफाई जो है वो सब किया। तब तभी सबको पता मतलब था कि मम्मा मम्मा क्यों बनी, मम्मा के अंदर कितनी ऐसी विशेषता है, मम्मा के अंदर कितना त्याग भावना है। जब मम्मा की जब बीमार हो गई थी तो भी कभी मम्मा मुरली मिस नहीं करती थी, चाहे कितना भी समय हो। और बाबा का जो रिकॉर्ड, बाबा रिकॉर्डिंग भेजते थे, बाबा की रिकॉर्डिंग वो सुनते थे। तो ऐसे मम्मा का प्यार रहता था बाबा के प्रति, बाबा के मुरली के प्रति। और जब उनको कैंसर हुआ था, इतना परिस्थिति नाजुक थी, लेकिन चेहरे पर कभी उनके नहीं आया कि भाई मेरे को ये, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा, मिलना जुलना ये वो। तो ये जो मम्मा के अंदर जो विशेषताएं है, ऐसा नहीं कि भाई इतनी महालक्ष्मी बनने वाले उसको ही ऐसा क्यों, उसको क्यों इस प्रकार से परिस्थिति, कभी थॉट्स नहीं, कभी संकल्प नहीं। तो चाहे परिस्थिति कोई भी आए उसको हमको मैनेज, अगर ये चीजें अगर हम मैनेज, देखो एक छोटे से पैसा कैसा रखे, फिर कपड़े कैसे रखे, फिर हम अलमारी कैसे रखे, अगर ये मैनेज करते जाएंगे तो आप फिर योग को मैनेज कर सकते हैं। कि जब हम योग में बैठते हैं तो सुबह समझो अमृत वेला बैठते तो सुबह 4 से 4:15, 4:15 से 4:30, 4:30 से 5:30, तो ये 3 भाग में उसको बांटो और एक एक अनुभूति करते जाओ। क्योंकि अगर वो स्थूल में आपको अगर प्रैक्टिस हो जाएगी, स्थूल में अगर आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे तो इन चीजों पे भी आपका ध्यान जाएगा और उसको भी आप मैनेज करेंगे, फिर आपको अमृत वेला झुटका नहीं आएगा, अमृत वेला इस प्रकार से चीजें आपके सामने नहीं आएगी। तो ये चीजें जब हम इतना मेडिटेशन करते हैं, बाबा के साथ कनेक्शन रखते हैं, बाबा से प्यार करते हैं, तो जो कुछ हमारा हिसाब किताब होता है, जो मम्मा को भी हिसाब किताब, बाबा को भी हिसाब किताब, तो हम लोग को भी हिसाब किताब आ सकता है ना। तो मुझे याद है मुझे 2007 में यहाँ रामदेव बाबा आए थे, नीचे जो मेडिटेशन रूम है ना उसमें आए थे, और सभी मधुबन मतलब ज्ञान सरोवर निवासी थे, और मैं समझता हूँ जानकी दादी जी थी, जानकी दादी जी ने योग कराया, रामदेव बाबा जी सामने नीचे बैठ के योग किया, 4:45 होने के बाद दादी निकल गई तो रामदेव बाबा खुद स्टेज पे आए। उन्होंने कहा कि देखो रामदेव बाबा हो और योगा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सिखाता हूँ, आप 10-15 मिनट करना और कुछ नहीं। बस उन्होंने 10-15 मिनट हमें सिखाया, 2-3 प्राणायाम था, 2-3 एक्सरसाइज सिखाया। उन्होंने कहा कि आप देखो इतने अच्छे जगह हो तो आप ये करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो ये प्रेरणा वहां से मिली तो हमने शुरू किया। मैं करीब एक मास दो मास कंटिन्यू अच्छी तरह से किया। तो क्या हुआ, दो मास के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पेट में कुछ है, कुछ गांठ जैसा कुछ है। तो हमारी एक सिस्टर आई थी, उसको बताया तो उसको मुझे भी लगा नाभि खिसक गई, उसको भी लगा। तो कोशिश किया लेकिन नाभि ठीक नहीं हो रही थी, तो उसको डाउट आया, बोला आप डॉक्टर को दिखाओ। तो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा सोनोग्राफी करो। सोनोग्राफी किया तो वो डॉक्टर ही डर गया, बोलता आपके पेट में गांठ है, बड़े डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा अच्छा। तो फिर दूसरे दिन यार डॉक्टर मेहता जी आए थे, तो उनको हॉस्पिटल गया, संडे का दिन था, तो उन्हें अच्छा इधर लेट जाओ, एक बेंच था, तो देखा तो उनको डाउट आया कि भाई कुछ है, तो उन्होंने कहा बॉम्बे चलो। अब बॉम्बे गए, मतलब तीसरे दिन तो हम मुंबई पहुंचे, जैसे ये पास इतना फास्ट प्रोग्राम हो गया। वहां गए, इसकी वो गांठ होती है उसकी बायोप्सी किया। बायोप्सी करने के बाद हम लिफ्ट से जा रहे, तो वहां 6 मंजिल की बिल्डिंग है, तो हम लिफ्ट में बैठ के जा रहे थे। तो क्या हुआ, हमारा जो मेरे साथ बहन का लड़का था, उसने कहा कि आपको है ना कैंसर है ना, वो पॉजिटिव है ऐसा। उसने बोला ये रिपोर्ट है ना पॉजिटिव है करके। तो मुझे बोला बहुत अच्छी बात है ना, पॉजिटिव तो होनी चाहिए। अब मुझे पता ही नहीं पॉजिटिव क्या और निगेटिव क्या, बाबा के घर में बैठे है। तो उसने मुझे समझाया कि पॉजिटिव माना आपको कैंसर है। मैंने कहा अच्छा। जैसे उसने बोला तो मेरे आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया एकदम ऐसे। तो लिप 6वीं मंजिल तक जाते जाते मैंने बाबा को याद किया, बाबा से बात करना शुरू किया। बाबा ये शरीर आपका है, मैं भी आपका हूं, और जो कुछ करना है आपको करना है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। फिर बाबा को कहा कि बाबा अगर आपको लगता है कि अब मेरी यहां की सेवा पूरी हो गई तो भी मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं। मतलब बाबा से साथ बात मैंने कहा बाबा ये 25 साल तो सेवा होगी, अभी वैसे भी रिटायरमेंट होता है, तो आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर यहां रखना है तो मुझे अच्छा रखो ताकि मैं सेवा कर सकूं। तो दोनों बाबा के ऊपर ही डाल दिया हमने, निश्चिंत हो गए। कमरे में गए तो एकदम सो गए अच्छी तरह से, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं, सारा बाबा के ऊपर बोझ। फिर सोते सोते मैंने एक विचार किया कि देखो कैंसर तो बहुत बड़ी बात है, अभी लोग बोलते थे अब ये मुझे है, तो ये तो मेरा हिसाब किताब है ना, दूसरों का तो नहीं ना, तो मैं इसको सबको बताऊंगा नहीं। तो मेरा बहन का लड़का था, उसको बोला कि भाई किसी को बोलने की जरूरत नहीं, डॉक्टर को पता है आपको मुझे, बस ठीक है। तो करीब करीब 2 मास हम लोग वहां ट्रीटमेंट करते रहे, कीमोथेरेपी होती गई, ये सब होता गया। तो पहले तो बहुत हंसी आई क्योंकि पहला जो कीमो हो गया तो ऐसे सलाइन जैसे होता है वो दवाई अंदर शरीर में, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा यार कुछ तो होता ही नहीं, ऐसे लोग डराते हैं इतना सारा। तो एक कीमो हो गया, 2 हो गया, जब 3रा कीमो हुआ ना तो थोड़ा खुजली होने लगी। मैंने ऐसे बाल खींचे तो बाल ही हाथ में आ गए सारे, इतना गुच्छा आया। अच्छा मैंने कहा अभी इसका असर शुरू हो गया, फिर सारे बाल बाल निकाल दिए। तो मैंने उस समय मैंने सोचा कि ये मैं परिवार को बांटूंगा नहीं, ये जो दुख है ना, अगर तो भी 2-3 मास के बाद उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हो गया, फोन आने लगे उनको, फोन क्या वो फोन पे रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्यों रो रहे, नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप बीमार हो, किसने बोला। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ हुआ ही नहीं। मैं उनको खूब चुटकुले सुनाता था, हंसाता था, तो वो लोग अंदर अंदर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी, सचमुच बीमार है या किसी ने ऐसे अफवाह फैला दी करके। तो वो फिर उन्होंने क्या किया, जो भी उनको मिलते थे ना, अरे नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा है, उसको कुछ नहीं, हम बात किया ना उससे तो हमको तो बहुत हंसाया, बहुत चुटकुले सुनाए। तो वो लोग हैरान हो गए। तो क्या हुआ, मैसेज आगे आगे बढ़ता गया कि सुभाष को कुछ नहीं हुआ बहुत अच्छा है, सुभाष को कुछ नहीं हुआ बहुत अच्छा है। तो उससे क्या हुआ, सभी के तरफ से मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू हो गई। तो वो पॉजिटिव एनर्जी से मेरा जो तबीयत है ना, रिकवर जल्दी होता था, मतलब अच्छा महसूस होने लगता था। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, कोई बीमार होता है तो निगेटिव एनर्जी क्या आता है, अरे कैंसर हुआ, बाप रे, अब ये तो एक आधा मास का मेहमान है, वो इंतजार ही करते एक मास में मैसेज आने वाला है, चला गया करके करते हैं ना हॉस्पिटल में जाते। हमें भी ये सीखना है, अगर हॉस्पिटल में हम जाते किसी पेशेंट के पास तो उनको डराओ नहीं, उनको समझाओ, अरे ये तो कुछ नहीं, ये डॉक्टर बहुत अच्छे है, ये अच्छे अच्छे बीमारी भी ठीक करते और आप ठीक होने वाले हो, अरे जब तक जिंदा है तब तक तो खुश रहेगा ना। आप पहले से बोलते हो, अरे हमारे पड़ोस में हुआ ना, वो तो एक 15 दिन में चला गया था, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, तो बेचारा पहले ही मरना शुरू हो जाता है ना। तो हमें क्या करना है, अगर भले हमें पता है कि ये ज्यादा जिंदा रहने वाला नहीं है, तो भी हमको क्या करना है, उसको हौसला बढ़ाना है, हिम्मत बढ़ाना है, प्यार करना है, ऐसे निगेटिव बातें लेके नहीं जाना है, या तो फिर जाओ नहीं उनको मिलने के लिए, है ना। तो ये चीजें तो मैंने हॉस्पिटल में देखा कि जब हम जाते थे मिलते लोग, डॉक्टर आते थे तो कभी कभी डॉक्टर हमको डांट लगाते थे, क्यों डाका, कि बोलते ये पेशेंट के बेड पे क्यों बैठे आप, अब उसको पता ही नहीं होता है मैं पेशेंट हूं करके। फिर नर्स बोलती थी, नहीं डॉक्टर साहब यही पेशेंट है, हा? ये पेशेंट है, क्योंकि मैं तो एकदम मस्त रहता था, फ्रेश रहता था, गुड मॉर्निंग करता था सब ऐसे। तो फिर वो डॉक्टर दूसरे लोगों को जाके बोलता था, फलाने रूम में जाओ देखो वो पेशेंट कैंसर का कैसे रहता है करके। तो वो भी कैसे एक सेवा का साधन जैसे बन जाता है। जब मैं पहली बार वहां से मुंबई से आया यहाँ, तो जानकी दादी को मिल गया, मिलने के लिए गया कॉटेज में, तो जानकी दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा गुलजार दादी के पास लेके गई, और गुलजार दादी को बताती, दादी देखो ना मेरे भाई को क्या हो गया। तो गुलजार दादी ने क्या बोला, कुछ नहीं, ये छोटा सा पेपर है ना, पास कर देगा। तो ये मेरा पहला वरदान दादी की तरफ से, बाबा की तरफ से। तो इस प्रकार ये ट्रीटमेंट आदि चलती गई, फिर मुंबई जाते। फिर एक बार मुंबई में क्या हुआ, गुलजार दादी आए थे पार्ला सेंटर पे, पार्ला सेंटर पे आए तो ग्लोबल वहां जो हॉस्पिटल है वहां एक अकाउंट ऑफिस था, उसका उद्घाटन। अब उद्घाटन जिस ऑफिस का उसके बाजू में मेरा रूम था। अब दादी उद्घाटन करके चली गई, अब क्या हुआ, वो नेपेंसी रोड गई वहां, तो नेपेंसी रोड में एक भाई ने पूछा, दादी जी वो सुभाष कैसे है, बोला कहाँ आए, बोला हॉस्पिटल में तो था, अच्छा मैं तो मिली नहीं। तो फिर दादी जी ने कहा अच्छा फोन लगा उसको, तो भाई ने फोन लगा के दिया। दादी जी ने जो मेरे साथ, गुलजार दादी जी मेरे साथ बात किया, दादी बोलती देखो ना मेरे से एक भूल हो गई। मैं बोला दादी आपकी भूल क्या, आपको पता नहीं था ना। नहीं नहीं भूल तो भूल होती है ना, मैं आई हॉस्पिटल में आपको मिली नहीं। उन्हें देखो कितनी महान विभूति, कितनी महान हस्ती, और वो कितना अपना मतलब नेचुरल रूप में कैसे मतलब स्वीकार कर रही है। तो ये सीखने की बात है कि, लेकिन क्या हुआ उस दिन मुझे मतलब इतना मतलब ये हुआ कि दादी ने फोन किया, दादी ने मेरे से बात किया, दादी क्या तो बाबा है ऐसे करके, मुझे पूरी रात है ना नींद नहीं आए, पूरी रात आंखों से पानी कि दादी ने मेरे से बात किया, दादी ने मेरे से बात किया। और दादी ने उस समय एक वरदान दिया था कि अभी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ और सेवा में लग जाओ। तो दादी का ये दूसरा वरदान था कि जिंदा रहूंगा तभी सेवा करूंगा ना। तो जब मैं यहाँ मधुबन में 21 दिन के बाद एक कीमो होता था, फिर यहाँ आते थे, तो मुझे याद है यहाँ जब आए थे कमरे में, तो कमरे में बैठे थे, तो मैं उसी दिन बाबा डायमंड हॉल में नीचे आ रहे थे, मतलब गीत वीत बज रहा था, मैं FM रेडियो में सुन रहा था, तो बज रहा था ऐसे, तो सुनते 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 अभी बाबा आ गए और दृष्टि देने लगे तो मैं कमरे में ट्रांसलेट था, तो बाबा के साथ बात किया। बाबा आप 25,000 लोगों को मुरली सुनाओगे और मैं अकेला बैठा हूं और मेरे आंखों से बहुत पानी आने लगा, ऐसे आंसू आने लगे। तो इतने में मैंने अनुभव किया कि वो ट्रांसलेट से ना धीरे 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 बाबा मेरे तरफ आए, मेरे बाजू में बैठे और पूरा 1.25 घंटा बाबा मुझे मुरली सुना रहे। मैं तो इतना खुश, इतना मतलब शरीर में ताकत इतनी, इतना खुशी। और जब मैं मुरली पूरी हुई, मैं तो एकदम उठ के डाइनिंग में आ गया, वहां चक्कर लगाने लगा। तो उधर सब लोग बोलते, अरे तुम इधर क्यों आया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम यहाँ क्यों? लेकिन मैं तो अंदर नशा चढ़ा हुआ है, इतना शक्ति मिली हुई है। तो इस प्रकार बाबा अलग अलग भक्ति मार्ग में लोग सोचते करते थे ना, भाई भगवान आके मदद करता है। तो मैंने देखा, अगर मैं हम सच्चे दिल से उसको पुकारते, किसी ना किसी रूप में बाबा मदद करता है, मदद करने आता है, हाजिर हो जाता है। वो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया। तो ऐसे मैंने देखा कि उसी पीरियड में अगर कोई चीज, मतलब इस पीरियड में भले दर्द है, कुछ है, लेकिन मैंने कभी ब्लेम नहीं किया भगवान के, अरे मेरे को मैं ही मिला, मैं इतना बचपन से कुछ खाया गंदा खाया नहीं, कुछ नहीं, मैं ही कैसे मिला। मतलब कई बार तो इतना दर्द होता था कि यहां से वहां बाथरूम तक जाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि वहां जाना है, इतना दूर जाना है, क्योंकि इतना वीकनेस होता है। कई बार तो मैं ऐसा खटिया पे लेटा रहता था हॉस्पिटल में, क्योंकि कीमो होने के बाद 7-8 दिन बहुत ज्यादा वीकनेस होती है। तो एक बार क्या हुआ कि हमारा भाई साथ में था और मैं ऐसा लेटा हुआ था और मैं ड्रिल कर रहा था। हमें एक बार जगदीश भाई जी ने ये बताया था कि यहां से आत्मा जा रहे, परम धाम जा रहे, बाबा को टच करे, वापिस आ रहे, फिर जा रहे, फिर आ रहे। तो ऐसे मैं हजारों बार करता था, क्योंकि उठ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते कुछ ऐसे। तो मैं इतना डीप साइलेंस में चला जाता था ना, तो कई बार हमारा भाई ऐसा मुझे हिलाता था, ये हैया चला गया करके, इतना डीप साइलेंस इतना हो जाता था। तो लेकिन उसमें मुझे है ना रिलीफ मिलती थी, मुझे मतलब दर्द कम हो जाता, शरीर में से दर्द कम हो जाता है और शक्तियां ऐसे मिल जाती थी। तो वो मैं लेटे लेटे बहुत करता था। और दूसरा मैंने एक और काम किया था, जो ठीक हो जाते थे तो जितने भी मेरे पेंडिंग काम थे, तो मेरे को थॉट्स था कि जगदीश भाई जी ने इतनी किताबें लिखे, मुझे पढ़ना है, एक बार पढ़ना है। लेकिन जब यहाँ सेवा में लगे, इतनी सारी कॉन्फ्रेंस ये वो, उसमें बिजी हो जाते तो रह जाता था। तो वो बीमारी के समय जितना भी मेरा काम था पेंडिंग वाला, वो सहारा मैंने निकाल के रखा। तो मैं एक एक ये जगदीश भाई की किताब, फिर दूसरा जो आवेक्त मुरलिया है, फिर जो गुलजार दादी के तन में बाबा आते और फिर मुरलिया चलाते, एक लैपटॉप लेके फिर वो देखते थे। तो ऐसे सुबह से शाम तक कैसा समय जाता था पता ही नहीं चलता था, एकदम ऐसे। एक बार हॉस्पिटल में हमारे निर्वय भाई जाए वहाँ ग्लोबल में मुंबई में, तो आए खास मिलने के लिए। तो जैसे नहीं उन्होंने फिर जैसे खड़े हो गए तो उन्हें एकदम ऐसे गले लगाया, जैसे नहीं जैसे बाप समान तो बड़े तो ही हमारे, तो जैसे एक बहुत अच्छी भासना फीलिंग आई कि कितना हमें प्यार मिलता है, कितना हम तो एक छोटे से किचन में सेवा करने वाले, लेकिन कितना स्नेह, कितना प्यार सभी देते हैं, वो मुझे रियलाइज हो गया हुआ। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि कैसे बाबा हर कदम, एक बार क्या हुआ डायरिया हो गया और इतना वीकनेस हो गया। तो मेरे एक भतीजा था इधर, तो उसको बोला फोन करके वहां एडमिट होना पड़ेगा, बहुत वीकनेस है। तो वो आया, गाड़ी में बिठाया, वहां जाते जाते मैं बेहोश हो गया, एकदम बेहोश, कुछ पता नहीं। जब मैं बेहोश हो गया तो दूसरे दिन डॉक्टर मेहता है, मेरी जब आंख खुली तो हम समझ इधर कहां गया, मैं समझ में नहीं आ रहा। तो दूसरे दिन डॉक्टर मेहता उधर आए, देखा, फिर हमारा वो कमरा सील किया, बोला यहाँ कोई भी नहीं जाना है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर कम हो गई। उस समय जो मुझे मिलने आते थे ना, वो मास्क पहने आते थे, तो मुझे वंडर लगता था, अभी तो सब लोग पहनते। तो जो जिसको भी मिलना है मास्क पहन के ही उसको मिलना है, ऐसे डायरेक्शन दिया वो दरवाजे के पर लिखा। तो मैंने देखा जब भी ऐसी परिस्थिति आती थी तो बाबा मदद करते थे, कुछ ना कुछ ऐसे कारण बन जाता था। तो इसमें मैंने देखा, जब यहाँ आता था तो मेरे परिवार में तो ज्ञान में बहुत है, तो मेरी दो एक बहन बहन की लड़की एक भाई की लड़की आई सेवा के लिए कि हम आपको सेवा करेंगे, और उनका तो चलो एक बार मधुबन जाके बाद में तो अपना शादी वादी कर लेंगे उधर, ऐसा इस हिसाब से आ गए। तो आए फीका खाना बनाते थे 15-20 मिनट में, मैं बोलता तुम इधर आए हैं तो तुम लोग आर्ट गैलरी समझाओ, तो फिर आर्ट गैलरी जाते थे। एक मास, दो मास, तीन मास हो गया, तीन मास के बाद मैंने कहा देखो ये कन्याओं की बट्टी उसमें बैठ जाओगे? हाँ बैठ जाएंगे। तो कन्याओं की बट्टी में बैठ गए, फिर टीचर भी बन गए, अभी एक दोनों में मुंबई में एक पार्ला में है एक बोरोली में है। तो उसके बाद क्या और दो आई, वो भी ऐसा ही बोला चलो लास्ट में बाबा के घर में जाके फिर अपना जो करना है कर लेंगे। वो आई वो भी सेवा करती रही, फिर आर्ट गैलरी जाती रही, फिर उनको बोला आप भट्टी है जाओगे? हाँ बोलते कन्याओं की भट्टी में बिठाया, वो भी दोनों ब्रह्मा कुमारी बन गए। तो देखो ये कभी कभी मैं बाबा को बोलता बाबा ये बीमारी थोड़ी, ये तो आपने मुझे गिफ्ट दिया है, इतने सारे लोग ज्ञान में चल रहे समर्पित हो रहे। दूसरी चीज हम टीवी देखते थे लेकिन कभी टीवी में आएंगे कभी नहीं सोचा था, लेकिन हमने देखा जब एक बार की बात है यहाँ शिवानी बहन और सुरेश अब्रय आए थे खाना खिला रहे थे, तो उनको ये मैं अनुभव सुना रहा था। तो बहुत उन्होंने कहा कितना टाइम तो होता है नहीं, तो शिवानी बहन ने कहा देखो हमें नहीं सुनाओ इसको लिखो, लिखे ज्ञान अमृत में डालो। तो मुझे अंदर अंदर हंसी आई, ये कोई लिखने वाली बात है ये कोई? तो फिर भी भाई शिवानी बहन ने बोला है तो चलो, तो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया क्योंकि हॉस्पिटल में थोड़ी थोड़ी चीजें लिख के रखता था, तो लिखते 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 फिर काफी लिखा, फिर मैं ये गोविंद भाई को दिया, मैंने गोविंद भाई इसको थोड़ा ठीक करो, उसने भाषा ठीक किया और ज्ञान अमृत में डाल दिया। ज्ञान अमृत में उनको इतना अच्छा लगा, उसका ट्रांसलेशन हो गया वर्ल्ड रिन्यूअल में, इंग्लिश में हो गया, फिर गुजराती में, मराठी में, बहुत भाषा में ट्रांसलेशन होके गया। अब जब मैं ठीक ठाक हो गया उसके बाद आर्टिकल लिखा, और जब ठीक हो गया तो सब लोग मिलने के लिए, बाबा का सीजन था, चलो सुभाष भाई को मिले क्योंकि तब पता चला उनको, लेकिन मतलब प्यार तो ईश्वरी परिवार का तो प्यार होता है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे उसके बाद फिर ये टीवी वाले उन्होंने 13 एपिसोड किया, पीस ऑफ माइंड में किया, सब में मतलब ये। फिर जब हम देखो थॉट्स कैसे होता है, कभी हमें सोचा होगा हमारे देश विदेश के लोग बहुत आते हैं तो बोलते आप हमारे पास कब आएंगे? हाँ हाँ हम आएंगे जरूर, हमको बताएं कौन जाएगा इतना दूर विदेश, कौन भेजेगा ऐसा। तो बीमारी ठीक होने के बाद हम दुबई गए, फिर वहां से सिंगापुर मलेशिया ऐसा करते, फिर जानकी दादी से मिले, जानकी दादी ने भी छुट्टी दिया तो लंदन मतलब पूरा यूरोप हो गया, दो मास वहां गए। फिर उसके बाद 2017 में अमेरिका जाना हुआ। तो क्या होता था जिधर भी जाते थे ना, जब हम थोड़ा ज्ञान सुनाना शुरू करते बीच में कोई उठता था बोलता है नहीं नहीं हमको ये नहीं सुनना है, आपका जो कैंसर वाला अनुभव वो सुनाओ, तो हमें तो कुछ नहीं, हमको तो सब तैयार मटेरियल है तो वही सुनाते थे। एक बार हम लोग क्या हुआ वैंकूवर में, कनाडा में गए थे वैंकूवर में, तो क्लास कराया, उसके बाद एक माता खड़ी हो गई रोते रोते रोते, बोलते पता है आपको किसने बुलाया? मैंने किसने बुलाया? मैं ही आया हूं। नहीं मैंने बुलाया आपको। बोला कैसे? बोला मैंने आपको पीस ऑफ माइंड में सुना था और तब से मैं बाबा को रोज अमृत वेला बोलती, ये भाई से मुझे मिलना है, ये भाई से मिलना है, आज बाबा ने देखो आपको हमारे सामने खड़ा कर दिया। देखो माताओं के भी कैसे पावर होती, शक्ति होती ना, कैसे शक्ति होती। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बाबा कैसे मदद करता है, कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो उसका रास्ते बहुत है, आप उसको अटको नहीं और खुशी खुशी से उसको पूरा करो। भाई हिसाब किताब है ना, ये किसी जन्म का है इसको पूरा हो रहा है, ठीक है अच्छा है बहुत अच्छा है, ऐसे पॉजिटिव अगर सोचेंगे तो आपकी बीमारी भी कितनी सारी सेवाएं करती। जैसे हमारी मम्मा मुंबई गई, पुणे गई, देखो तो जहां जहां गई सेवा करती, जहां जहां गई सेवाएं, तो इस प्रकार से हमने देखा दादियों के साथ। मुझे याद है गुलजार दादी के पास हम लोग एक बार मिलने गए थे शांतिवन में, जो शक्ति भवन में, मतलब कितना प्यार करते। तो हम दो भाई थे, गए दादी के रूम में बैठे थे, तो दादी के साथ बातें, दादी ने कहा ज्ञान सरोवर में क्या प्रोग्राम चल रहा है, बारिश हो रही है, बातें करते करते फिर दादी जी कहते अच्छा आप लोग बैठो, मैं अब भी आती हूँ। तुमने हम बैठे बुद्धू जैसे बैठ गए उधर। तो जब दादी जी वापिस आए ना, तो दादी जी के हाथ में दो प्लेट, उसमें नमकीन मीठा ये सब भर के, दादी ऐसी सरो, इतना हम लोग इतना आवाज, दादी ये क्या कर रहे हो? तो अभी क्या करे, दादी जी लेके आई, मना भी नहीं कर सकते। तो दादी जी ने कहा देखो मैं जब ज्ञान सरोवर में आती हूँ तो आप लोग कितना खातिर करते, मैं भी खातिरी करूंगी। तो देखो मैंने कहा दादी आपको देखने के लिए लोग तरसते कि आपका दर्शन और आप हमारी सेवा करें, हमको कितना, नहीं नहीं हमारा भी तो फर्ज है ना। ऐसे मतलब देखो कैसे, मतलब दादी इतनी बड़ी विभूति जिसको देखने के लिए लोग तरसते, और ऐसी दादियां को प्यार। इसलिए मैंने कहा मैं 1983 में आया था यहाँ पहली बार, उसके बाद मुझे बाबा के प्रति इतना स्नेह इतना प्यार हो गया, तो मैं संकल्प किया मुझे यहाँ रहना है। तो 10th क्लास का ही था, दादी बोलती नहीं ये तो छोटा है, फिर जाते थे फिर आते थे फिर, तो आखिर 1986 में मुझे याद है प्रकाशमणि दादी जी दो चार दिन पहले मुझे कहा कब घर जा रहे हो? तो मैंने कहा दादी जी अभी राखी का प्रोग्राम है, राखी बांध के जाऊंगा। अच्छा बहुत अच्छा, ऐसा करके अब क्या हुआ, मैं राखी के दिन मैंने कहा ये तो लास्ट डे हमारा, सब मधुबन निवासी बैठे थे सब राखी बांध रहे थे, तो मैंने कहा मैं एकदम योग करूंगा और सबसे लास्ट में जाऊंगा। तो मैं सबसे लास्ट में, दादी ने ऐसे किया बुलाया, मैं गया, दादी जी ने राखी बांधा और दादी जी ने है ना जोर से हाथ पकड़ा, ऐसे मिलाया हाथ और फिर ऐसे किया आज से तुम्हें कहीं नहीं जाना है, यही रहना है। तो वो इतनी बड़ी गिफ्ट, इतनी खुशी, क्योंकि उसके लिए हम रात दिन योग करते थे, बाबा के कमरे में 2 बजे उठ के योग करते थे, बाबा हमको यहाँ रहना है। मैंने कहा क्या हो गया, 4 दिन तो पहले तो दादी ने मना कर दिया था, अभी क्या हो गया? तो फिर मुझे बाद में पता चला जो भोली दादी है ना, भोली दादी, उनके साथ हम सेवा करते थे, बहुत प्यार करते थे, हमें बहुत कुछ सिखाया। तो क्या हुआ, भोली दादी के पास हमारी जो मम्मा की ब्राह्मणी जमुना दादी, भूरी दादी, पालू दादी, ये 3-4 दादियां भोली दादी के पास गए। भोली दादी को कहा भोली दादी ये बच्चा हमको चाहिए, हमको खाना खिलाने के लिए चाहिए, बहुत अच्छी सेवा करता है। अब वो उधर भोली दादी को बोला, भोली दादी प्रकाशमणि दादी के पास रोज जाती थी अमृत वेले के बाद, आज क्या भोजन बनाना है मेन्यू लेने के लिए। तो उस समय भोली दादी ने प्रकाशमणि दादी को बोला दादी मेरा तो सारी कान खा रही है। बोले क्यों? बोलती ये इसको क्यों भेज रहे आप सुभाष को, उसको रुको ना, उसको यहाँ सेवा की जरूरत है। तो अच्छा, तो दादी ने सुन लिया इतना, लेकिन उसी दिन राखी का प्रोग्राम था, तो राखी के प्रोग्राम में ये हमारा बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया। तो इसी प्रकार मैंने देखा कि देखो हम नॉर्मल चलते फिरते बैठते तो हमें कुछ नहीं लगता है, लेकिन जब बीमार होते तो पता चलता है कि भगवान ने हमें कितनी बड़ी प्रॉपर्टी दी है। अमेरिका में रिसर्च किया गया, ये जो शरीर है ना, ये बाल है कान है दांत है, इसका रिसर्च किया तो ये शरीर की कीमत कितनी निकली पता है? 225 करोड़। कितना? जो आप शरीर लेकर घूम रहे हो ना वो कितना है? 225 करोड़। कितनी बड़ी मर्सिडीज है भगवान ने आपको फ्री में दिया है, और उसका ड्राइवर भी फ्री में दिया है, जो आत्मारूपी ड्राइवर। तो कभी भी हमें मायूस नहीं होना है कि अरे भगवान ने हमें इतनी अच्छी गाड़ी, तो इसको क्या करना है, अच्छा रखना है, मुझे इसको एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, योगा करो, इसको फिट रखना है और फिट रख के उससे सेवा कराना है। तो तब से मुझे रियलाइज हो गया कि हमें शरीर को अच्छी तरह से रखना है। और हमें पता होता है कि भाई आलू खाएंगे तो गैस होता है, फलाना खाएं तो ये होता है, तो छोड़ दो ना वो चीजें। देखो हम अपने शरीर के साथ कितना दिनों से रहते, कितने साल से रहते अपने शरीर के साथ, हाँ? जब से हम जन्म लिया है तब से हम ये शरीर के साथ रह रहे, तो हमें शरीर का अभी तक पता नहीं कि भाई ये क्या चाहता है, हाँ? अगर कुछ मर्सिडीज गाड़ी में पेट्रोल के बदले केरोसिन डालेंगे तो कैसे होगा? तो हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इसका भी हमें अक्ल होना चाहिए, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, तो हमारा शरीर एकदम फिट रहेगा। तो अभी वर्तमान समय मेरा कोई दवाई नहीं है, फिर सिर्फ सुबह प्राणायाम योगा थोड़ा बहुत खेलते हैं और सुबह वीट ग्रास पीते, वीट ग्रास माना जो गेहूं होता है ना, गेहूं का जवारा होता है उसका जूस पीते हैं, और वॉकिंग तो अपने आप वॉकिंग हो जाती है, ये सालगा हो जाते हैं रोज, तो इतना अच्छा फ्रेश लगता है, एक्टिव, जैसे बीमारी के पहले भी इतने एक्टिव नहीं थे, अभी इतना एक्टिव लगते। तो इस प्रकार बाबा कुछ ना कुछ जिम्मेवारी लेते, वो भी कर लेते, और हम कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके बाबा के बच्चों की सेवा होनी चाहिए, बाबा के बच्चे खुश होना चाहिए, बाबा के बच्चों की किस प्रकार से पालना होनी चाहिए। तो क्योंकि कई बार तो ऐसा लगता है ना, ये तो बाबा ने मुझे नया जन्म दिया है, तो क्यों ना जितना हो सके इससे फायदा उठाना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने देखा कि कभी कई बार बाबा के साथ मैं बात करता हूँ तो बाबा को बोलता हूँ बाबा ये बीमारी थोड़ी है, ये तो आपने मुझे गिफ्ट दिया है, उसके कारण इतने सारे ब्रह्मा कुमारी बने, मेरे सारे दुनिया में नाम कमा गया, मैं टीवी देखता था लेकिन टीवी में कभी आऊंगा कभी नहीं सोचा था, लेकिन उसके कारण टीवी में मतलब अलग अलग अवेकनिंग पीस ऑफ माइंड इसमें जाता है। तो इस प्रकार से बीमारी भी कैसी सेवा करती है, इसलिए कभी भी दुखी नहीं होना है, कभी भी मायूस नहीं होना है। तो जब मैं बीमार था तो मैं एक विशेष अभ्यास करता था, एक तो बाबा को शुक्रिया, उठते ही शुक्रिया बाबा शुक्रिया, और दूसरी चीज एक अभ्यास करता हूं मैं, अभी लास्ट में हम सभी करेंगे, उसी में हम योग करेंगे। सिंपल है कि बाबा मेरे ऊपर है, बहुत नजदीक है, और बाबा की रेज मेरे ऊपर आ रही है एकदम, और वो ब्लू वायलेट है, तो यहां शरीर पे ब्रेन पे धीरे धीरे आगे पूरा नाखून तक, और पूरा शरीर ब्लू वायलेट हो रहा है। फिर यह अनुभव करना कि मेरे शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नेगेटिव जम्स है, जो भी रोग के जम, वो खत्म हो रहे, भस्म हो रहे, और मैं एकदम निरोगी, एकदम कंचन काया, एकदम पावरफुल, आत्मा भी पावरफुल, ये अनुभव करना है। तो अब तो सब तैयार है, सभी हाँ? सब एकदम अलर्ट होके बैठ जाओ। मैं आपको बताते जाऊंगा, वैसे वैसे आप अनुभव करते जाना, ठीक है ना? शिव बाबा मेरे, सिर के ऊपर है, बहुत नजदीक, एक पावरफुल रेज ब्लू वायलेट, एकदम पावरफुल मेरे सिर के ऊपर आ रही है, और धीरे धीरे वो ब्रेन, आंखें, कान, नाक, मुंह, गले से होते हुए छाती पे, धीरे धीरे पूरा शरीर ब्लू वायलेट होता जा रहा है, मेरा पेट, दोनों हाथ, दोनों टांगे, ये रेस ब्लू वायलेट की धीरे धीरे पूरा शरीर पे फैल गई एकदम नाखून तक। शरीर के अंदर जो भी बीमारी के जर्म्स है वो जल के बस हो रहे हैं। मेरा शरीर धीरे धीरे प्योर होता जा रहा है, कोई भी बीमारी के जर्म्स, कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं है मेरे शरीर में, एकदम प्योर। मेरा शरीर एकदम शक्तिशाली बनता जा रहा है। मुझे आत्मा की लाइट भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पावरफुल होती जा रही है। अब मेरा शरीर और आत्मा दोनों भी प्योर हो गए, शरीर में कोई भी बीमारी नहीं, आत्मा में कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं है, एकदम प्योर। मेरा शरीर एकदम लाइट, हल्का, आत्मा भी एकदम हल्की, धीरे धीरे आत्मा निकल के ऊपर की ओर जा रहे है, धीरे धीरे ऊपर की ओर। साकार, साकार से ऊपर जहाँ हम चांद सूरज देख रहे हैं, उसके भी ऊपर सूक्ष्म वतन जा बाबा, मम्मा, दादियाँ, अब और भी ऊपर जा लाल लाल लाइट, चारों तरफ स्टार ही स्टार, और सबसे ऊपर सुप्रीम फादर मेरे प्यारे शिव बाबा, एकदम पावरफुल। मैं आत्मा शिव बाबा को टच करती हूँ और बाबा मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर कर देता है। मेरी आत्मा की शक्ति भी पावरफुल, कोई भी कमी नहीं। शिव बाबा को थैंक्स करते हुए, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। धीरे धीरे हम फिर से परम धाम से सूक्ष्म वतन में, जहां हमारे आदि रतन भाव फैलाए हमारा स्वागत करे, सारी दादिया मम्मा बाबा वहां से विदाई लेते हुए हम फिर साकार दुनिया जहां से चांद सूर्य तारांगन धीरे धीरे हम नीचे की तरफ, अब हम ज्ञान सरोवर के ऊपर सुंदर दृश्य देखते हुए इस हॉल में प्रवेश करते हैं। अपने सीट पे इस प्रकार हर दिन 3-4 बार अभ्यास करते रहेंगे तो आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। ओम शांति।